ಸ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಾ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅವಿರಲ ಶಬ್ದ ಘನೌಘ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತ ಸಕಲ ಭೂತಲ ಕಲಂಕ ಮುನಿ ವಿರೂಪಾಸಿತ ತೀರ್ಥ ಸರಸ್ವತಿ ಹರತಿ ನೋ ದುರಿತಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮ್ರಾಂಧಾನಾನ್ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಪರಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಂ ಪರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಕಲ ಕಲುಷ ವಿಧ್ವಂಸಕಂ ಶೇಷಾಂ ಪರಿವರ್ಧಕಂ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಕಂ ಭವ್ಯ ಜೀವ ಮನ ಪ್ರತಿಬೋಧಕಾರಕಮಿದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾನುಪೇಕ್ಷಾ ನಾಮಧೇಯಂ. ಅಸ್ತು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞದೇವಾಸ್ತದುತ್ತರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಧರ ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಗಣಧರ ದೇವಾಸ್ತೇಷಾಂ ವಚನೋನುಸಾರ ಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ವಾಮೀನಾಂ ವಿರಚಿತಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಲಂ ಗೌತಮೋ ಗಣಿ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದಕುಂದಾದ್ಯೋ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಲಂ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ. ಕೋಟಿ ಶುತಂ ದ್ವಾದಶೈವ ಕೋಟ್ಯೋ ಲಕ್ಷಣಾನ್ಯ ಸೀತಿಸ್ರದಿಕಾನಿ ಚೈವ ಪಂಚಾಶದಷ್ಟೌ ಚ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಮೇತ ಶ್ರುತಂ ಪಂಚಪದಂ ನಮಾಮಿ. ಅರಿಹಂತ ಭಾಸಿ ಯತ್ತಂ ಗಣಹರ ದೇವೇ ಗಂತಿಯಂ ಸಮ್ಮಂ ಪಣಮಾಮಿ ವತ್ತಿಯುತ್ತೋ ಸುರನಾನಮೋ ವಯಂ ಸಿರಸಾ. ಇಚ್ಛಾಮಿ ಭಂತೆ ಸುಧಭುಕ್ತಿ ಕೌಸಗೋ ಕೋತಸಾಲೋಚಿಂ ಅಂಗುಗುಂಗ ಪೈನೆ ಪಾವುನೆ ಪರಿಯಂ ನಿಸುತ್ತ ಪಣಿಮಾಣಿ. ಓ ಗುಮ ಗೈ ಚುಲಿಯಾ ಚೈ ಸುತ್ತಥೈ ತ್ವಿಧಂ ಕಾಯಂ ಸ್ಯಾನಿಚ್ ಕಾಲ ಮುಂಚಿಮಿ ಪೂಜಿಮಿ ವಂದಾಮಿ ನಮನ್ಸಾಮಿ. ದುಃಖ ಕೋ ಕಮ ಕೋ ವೈಲಾ ಸುಗೈಗಮನ ಸಮಾಯ ಮಂಡಂ ಜಿನ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಗೋ ಮಧ್ಯಂ. ನಮಸ್ತು ಪೂರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇಲಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾಯಸ್ವರ್ಗಂ ಕರೋಹ್ಯಂ. ಶುಧ ಜಲದಿ ಪಾರಗೇಭ್ಯ ಸಪರಮದ ವಿಭಾವನಾ ಪಟುಮತಿಭ್ಯ ಸುಚರಿತಪೋ ನಿಧಿಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ಗುಣ ಗುರುಭ್ಯ. ಛತ್ತೀಸ್ ಗುಣ ಸಮ್ಮಗ್ಗೇ ಪಂಚವಿಹಾಚಾರ ಕರ್ಣ ಸಂದರ್ಶೇ ಶಿಷ್ಯಾನುಗ್ರೇ ಕುಶಲೇ ಧಮ್ಮೈರ್ಯ ಸದಾ ವಂದೇ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಂಜಮೇನ ತರಂತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಯರಂ ಘೋರಂ ಶಿಣ್ಣಂತಿ ಅಕ್ಷಕಂಬಂ ಜನ್ನಂ ಮರಣಂ ನ ಪಾವೇಂತಿ ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವ್ರತ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ನಿರತಾ ಧ್ಯಾನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಕುಲ ಷಟ್ಕರ್ಮಾಭಿರತಾ ತಪೋಧನ ಧನಾ ಸಾಧು ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧುವಾ ಶೀಲ ಪ್ರಾಭರಣಾ ಗುಣ ಪ್ರಹರಣಾಶ್ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ತೇಜೋಧಿಕಾ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಕ ಪಾಠ ಪಾಠನ ಭಟಾ ಪೀನಂತು ಮಾಂ ಸಾಧುವಾ ಗುರುವಾ ಪಾಂತನು ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ನಾಯಕಾಃ ಚಾರಿತ್ರಾಣೋ ಗಂಭೀರಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶುಕಾ. ಇಚ್ಛಾಮಿ ಮುಂತಿ ಐರಿ ಉಕ್ತಿ ಕಾವು ಸುಗೋ ಕೌತಸಾಲೋಚಿ ಮನಾನು ಸಂಬಂಧನ ಸಂಚರ್ಯುತ್ತಾನಂ ಪಂಚವಿಹಾಚಾರಣ ಮೈರ್ಯಾಣಂ ಆಯುರಾದಿ ಸುಗುಣಾನು ಉದೇಶಾಣಂ ಅಧ್ಯಾಯಾಣಂ ತಿರಿಯಣು ಪಾಲಂದ್ರಯಾಣಂ ತವು ಸಾಹುನಂ ಸಯಾನಿಚ್ ಕಾಲಂ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆ ವಂದಾಮಿ ನಮನ್ಸಾಮಿ. ದುಃಖ ಕೋ ಕಮ್ಮ ಕೋ ವೈಲಾ ಸುಗೈನಂ ಸಮಯನಂ ಜಿನುಗಂ ಸಂಪತ್ತಿ ಓ ಮಧ್ಯಂ. ತಿಹುವನ ತಿಲಯಂ ದೇವಂ ವಂದಿತಾ ತಿಹುವಣಿಂದ ಪರಿಪೂಜ್ಯಂ ಓಷಂ ಮಣಿಪೇ ಹಾವೋ ಭವ್ಯ ಜನಾನಂದ ಜನನೀ. बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की। अनुप्रेक्षा के बारे में अपन जान रहे हैं। अनुप्रेक्षा अपनी एक विनम्र कोशिश है वास्तविकता को जानने की। किसी चीज़ की वास्तविकता क्या है, जब इसको जानने का बार बार हम प्रयास करते हैं, उसका नाम अपन ने अनुप्रेक्षा रखा है। और अनुप्रेक्षा में चिंतन विशेष रूप से किया जाता है। और जब कोई बात चिंतन में आने लगती है, कोई बात भावना में आने लगती है, तो फिर जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। इसलिए अनुप्रेक्षा जो है, जीवन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम भी अनुप्रेक्षा है, जिससे कि जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए। जैसी हमारी भावना होती है, या कि जैसा हमारा, पहले तो होता हमारा विचार, जैसा हमारा विचार होता है वैसी हमारी भावनाएं बनना शुरू होती, उसके अनुसार ही फिर हमारा जीवन चलता है, बाहर में दिखाई देने लगता है, व्यवहार में आना शुरू हो जाता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस तरह की स्थिति है, वो ही भावना है। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि छह भावना के बारे में तो मालूम पड़ता है शुरू में, कि भाई हमने विचार कर लिया कि चीज़ अनित्य है, टिकने वाली नहीं है, एक दिन टूट करके गिर जाएगी। ठीक है, ये भी चिंतन की बात थी, वो भी कर ली हमने। उसके बाद अशरण, हमने सोचा था कि आखिरी समय जिंदगी में कोई अगर पार्टिसिपेट करेगा थोड़ा बहुत, तो दो चार सांसें अगर कम पड़ जाएंगी हमारी तो दे देगा। लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ा मरते समय कि कोई सांस का बंटवारा जो हमारी जिम में आई थी वही हमारी रही, किसी दूसरे ने तो दे ही नहीं पाई। ये भले ही हो सकता है कि पानी आखिरी में बेटे ने पिला दिया हो एक ग्लास, आज तो वो भी संभव नहीं है। तो शरण हम कहाँ कहाँ खोज रहे थे, दुनिया की किसी चीज में हमको शरण समझ में नहीं आई। ठीक है, ये भी हमने सोच लिया, ये भी सोचने जैसी बात है, सोच ली। उसके बाद जो है, आपने कहा संसार के बारे में सोचो, हमने संसार के बारे में भी सोच लिया। तीसरी भावना हो गई संसार भावना हो गई। उसके बाद जो है, हम अकेले हैं, एकत्व भी हो गया, कोई दूसरा हमारा नहीं है, अन्यत्व भी हो गया। अशुचि, शरीर ठीक नहीं है, गंदा है शरीर, ये भी हमने सोच लिया। ये सारी बातें तो सोचने की हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि आश्रम, आश्रम में सोचने वाली बात क्या है, संवर में सोचने वाली बात क्या है, निद्रा में सोचने वाली बात क्या है, इनको कैसे आपने अनुपेक्षा कह दिया। आप पूरी चर्चा तो ये कर रहे हैं, देखिए मैं आपकी तरफ से सारी बात कर रहा हूँ, आप ये मान के चलिए, ऐसा अपने अंदर एक क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसा प्रश्न मन में बन सकता है कि आश्रम में तो आपने ये कहा कि इतने प्रकार से आश्रम होता है और इसको रोकना चाहिए, और उसके रोकने का नाम संबर है, और जब संबर हो जाता है तो जिन भावों के द्वारा संबर होता है उन्हीं के द्वारा बंधे हुए कर्मों की निद्रा भी होती है। अगर संबर पूर्वक निद्रा की जाए, अभी पाक निद्रा की अगर चर्चा है, तो वैसे तो उदय में आता है और अपना फल देकर के चला जाता है, वो तो उसमें पंडित जी साहब भी कल कह रहे थे कि कछु काम में सर है उसे हमारे, ऐसी तो हमेशा होते रहे, नहीं कछु सर है काज तेरा, मंगत राय की भावना में लिखा है। वो बात ठीक है कि वो वाली निर्द्रा, लेकिन हम यहाँ जिस निर्द्रा की भावना कर रहे हैं, जिस निर्द्रा की अनुपेक्षा कर रहे हैं, जिस आश्रव संबर की अनुपेक्षा कर रहे हैं, वो क्या चीज है? क्या सिर्फ हमें उपाय करना है या कि कोई चिंतन भी करना है? तो भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्ट हुआ करती। जैसे हमने किसी चीज के बारे में सोचा कि ये पेन है और ये टूट फूट जाएगा, और मेरा इससे जो लगाव होने वाला था वो इस तरह के चिंतन करने से शायद कम होगा, और डेफिनेट है कि कम होगा। जो आदमी ये जानता है कि कल के दिन ये टूट फूट जाएगा, मिट जाएगा, मैं इससे जितना ज्यादा अटैच हो रहा हूं, जितना जुड़ रहा हूं, उतनी मुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये तो कल रहेगा नहीं, इसका नेचर वैसा है, हमने अनित्य भावना में यही तो सीखा है। तो इससे ये तो हो गया, हमारे सोचने से इतना फर्क पड़ गया। अब सवाल ये है कि आश्रव में इस तरह का तो कुछ होने वाला नहीं। चक्रवर्ती आश्रव संबंध इन सब तत्वों को जानता है, सात तत्वों को, लेकिन इसके बाद भी आश्रव रोक पाता है क्या? ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा। आश्रव रोकना अलग बात होती है और आश्रव के बारे में समझना अलग बात होती है। यहां पर जो अनुप्रेक्षा है वो आश्रव संवर और निद्रा की मात्र सोच लेने की स्थिति नहीं है। इसलिए अनुप्रेक्षा की परिभाषा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विजुअलाइजेशन भी है, जो कि हमने सबसे पहले कहा था।
कि सिर्फ एक समझ पैदा कर देना ये अनुप्रेक्षा का काम नहीं है, नहीं वास्तविकता को हूबहू सामने दिखा देना। अब जब आश्रव हो रहा है तो मैं देखूं होते हुए आश्रव को और उसमें से कोशिश करूं कि इसे बंद कर सकूं। जैसे ही आप बंद करने की कोशिश करेंगे उसी का नाम तो हम कहेंगे संवर। देख लो आप संवर हो रहा है और संवर जिन भावों से आपने किया है उन्हीं भावों से आपने पुण्य का संवर किया है तो उन्हीं भावों से पाप की निद्रा भी उसी के साथ होती चली जा रही, ये प्रक्रिया एक साथ चल रही। इसको देखने के लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। इसलिए जब आश्रव तत्व का अपन वर्णन करते हैं या कि आश्रव तत्व को समझते हैं तब वो आश्रव तत्व अलग चीज है, लेकिन आश्रव अनुप्रेक्षा जब अपन करते हैं तो उसमें बात कुछ और हो जाती है। इतना अपने लिए यहाँ पर आश्रव संवर और निद्रा इन भावनाओं के बारे में, क्योंकि जब भी कोई भावना बनेगी किसी चीज की तब तब करने का मन जरूर हो। भावात्मक व्यक्ति ही करता है, वैचारिक व्यक्ति नहीं करता। ये मैं कल भी मैंने कहा, वैचारिक व्यक्ति विचार करके चुप बैठ सकता है, दूसरे को विचार दे सकता है, क्योंकि विचार का इतना ही काम है। बुद्धि का काम है तोड़ना, हृदय का काम है जोड़ना। बुद्धि विभाजन करती, विश्लेषण करती है, एनालिटिकल होती है, हमेशा एनालाइज करके सब रख देगी। अब उसके बाद आपको क्या ग्रहण करना कि आपके हृदय की बात। जैसे कई बार अपन चर्चा करते हैं कि आलू ऐसी चीज है या कि गड़न चीजें ऐसी हैं या कि फलानी चीज शाकाहार नहीं है, फलानी चीज में मांसाहार है, इस तरह की चर्चा जब करते हैं तो ये तो हो गया एक नोइंग एटीट्यूड, हमारे जानने का एक तरीका हो गया, हमारे जानने की दृष्टि हो गई। अगर जानने की दृष्टि से हमने किया होगा, नोइंग एटीट्यूड अकेला होगा अपना, जानने का दृष्टिकोण तो जान लिया अपन ने, कौन नहीं जानता। कितनी सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं मालूम और आपको मालूम हो, जानते हैं। लेकिन उसके बाद आता है डिवोशनल एटीट्यूड, जब हमारा भावात्मक जुड़ाव उसके साथ होना शुरू हो जाता है तब फिर जीवन में परिवर्तन उसी चीज से आना शुरू हो जाता है। बस इतनी सी गुत्थी है और कुछ नहीं। अपन लोगों को जानकारी सब है, अपन बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरा तो ऐसा सोचना है हर चीज के बारे में, लेकिन जिस तरह जाना जाना चाहिए वैसा नहीं जान पाते। सम्यक दर्शन के साथ जो जानना होता है वो जानना जीवन में परिवर्तन लाता है, वो बिना सम्यक दर्शन के जो जानना होता है वो जीवन में परिवर्तन नहीं लाता। मेन बात ये, कुल मिला के आखिरी तक आप मेरे से पूछेंगे तो लास्ट में भी यही कहूंगा, आखिरी दम में भी यही कहूंगा, क्योंकि लिखा हुआ आचार्य। पर अपन इसी दुविधा में है कि अपन इतना जानते हैं समझते। कई बार लोगों की प्रॉब्लम सामने आ जाती है, महाराज जी सब तो जाना थे मगर उदय से सुन के बाहर निकले थे तो सब ऐसे हो जाते। अब क्या बताएं हम अपने मन की, तो क्या मजबूर हैं हम? नहीं, मजबूर नहीं है हम। मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि हम वैचारिक हो गए, हमने सोच के स्तर तक ही बात को सोच लिया कि इतना हमने सोच लिया है काम हो गया। लेकिन अकेले सोचने से काम नहीं होता भाई, भावना वैसी बनाना पड़ेगी। इसलिए अनुप्रेक्षा का नाम सिर्फ चिंतन नहीं है, अनुचिंतन के साथ साथ भावना का अर्थ है। हम उस चीज को जीवन में अनुभव करके देख रहे हैं, महसूस करके देख रहे हैं, आश्रय क्या है, संवर क्या है, निद्रा क्या है। मैंने आपको एक बार आचार्य श्री का निद्रा के बारे में बताया था कि हमने पूछा था प्रश्न और उन्होंने निद्रा का फौरन बता दिया था किस तरह निद्रा होती। मुझे आज ध्यान आया एक सुबह सुबह कि एक बार ऐसा हुआ था, आपको शायद यहाँ सुनाए कि नहीं सुनाए, या क्ले अंदर वहाँ पर सुनाया होगा। मैं फिर से उस चीज़ को दोहराता हूँ कि ऐसे बहुत थोड़े से साधक हैं आज के समय में जो कि किताब की बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और निद्रा और आश्रव या संवर ये सब चीज़ें बिल्कुल भावात्मक हैं। आपका सोचने का ढंग बदला और निद्रा होना शुरू हुई। देखना, बाहर के कृत्य बदलने से निद्रा शुरू हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर का कृत्य जैसे ही बदला और आपके भीतर की भावात्मकता बदली, दोनों एक साथ होना चाहिए। देखिए, द्रव्य और भाव दोनों एक साथ होना चाहिए। बिना द्रव्य के भाव नहीं होता, बिना भाव के द्रव्य तो हो सकता है लेकिन बिना द्रव्य के भाव नहीं होता। जब जब ये बात चलती कि हम तो भावात्मक क्रांति कर लेंगे, तो पहले द्रव्यात्मक क्रांति हो चुकी होगी। इसका मतलब जब कोई आदमी शुक्ल ध्यान कर रहा होगा तो ये तो तय है कि वो दिगंबर होगा, उसके बिना शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात, इतनी सरल सी बात है, अपन इस चीज को नहीं समझ पाते। जो चीज जिस स्थिति में होगी उसी स्थिति में जाकर के होगी, वो भूमिका तो उसको पहले प्राप्त करनी होगी। तो आचार्य जी जैसे बहुत थोड़े से साधक हैं भैया, जो कि इस तरह के जीवन में अपने पूरे मन को बदल करके निद्रा उसी चीज से निद्रा करने लगते, जैसे हमने आपसे कहा था कि खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अब वो तो मजबूरी है और साहब किसी ने कहा इसलिए हमें खड़े होना पड़ा, और इस तरह की अगर कंडीशन है तो करते हुए भी निद्रा नहीं होगी। और अगर मन नहीं था, कहने से दूसरे के बन गए हैं, फिर भी खड़े होकर के नहीं, मेरा अब आनंद आ रहा है मुझे और मुझे अपनी भावना इस पे लगानी चाहिए, और जिस दिन भावना लगानी शुरू कर दी निद्रा होने शुरू हुई। क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे ये उधर 80 में मुक्तागिरी का चतुर्मास करके और रामटेक जा रहे थे, तब बीच में जो है, और या तो हो सकता कि मुक्तागिरी जा रहे हैं, एकदम दिमाग से उड़ गई बात, पर बीच में एक जगह ऐसा हुआ कि उत्खेड़ एक नाम का गांव था, उत्खेड़, और वहां जाना था, और उसके 9 किलोमीटर पहले से बाइफर्केशन होता था, रास्ता मुड़ता था, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, जो लोग साथ थे वो भी भूल गए, और हम लोग जो है उत्खेड़ के सीधे रास्ते पर 9 किलोमीटर पहुंचने वाले रास्ते पर ना जा करके और अंबाड़ा के रास्ते में मुड़ गए, अंबाड़ा से भी उत्खेड़ था, तो हम लोग उस तरफ मुड़ गए और पहुंच गए 9 किलोमीटर शाम को चल करके, पूरे बिल्कुल समझ लो कि हाथ की रेखाएं जब तक दिखती हैं तब तक साधु चल सकता, बस इससे ज्यादा नहीं चल सकता, उसके बाद वहीं बैठना पड़ेगा। 1 किलोमीटर रह गया अंबाड़ा और 1.5 किलोमीटर लगभग, और वो वहीं पर जो है अब बंद हो गया और आचार्य वहीं रुक गए, हम सब लोग वहीं पर रुक गए, और वो था एक ठो खलिहान, तो खलिहान वो ज्वार का था, और ज्वार के खलिहान में उन्होंने ऐसे मचान जैसे बना ली थी, 1-1.5 फीट नीचे पानी वगैरह हो जाता है, और ठंड के दिन ये मान के चले, हाँ वो लौटने का समय था जब हम लोग मुक्तागिरी से लौट रहे थे, नवंबर दिसंबर के लगभग की बात है, और उसमें 1.5 फीट का उन्होंने ऐसा मचान जैसा बना दिया है, और चारों तरफ से आप इमेज करिए बिल्कुल ऐसे ही एक नीचे स्टेज जैसा बन गया, और चारों तरफ से उसमें वो सिट्टे जो है ज्वार के जो बचे रहते हैं उन्हीं से उनने, और इतनी ऊंची बाउंड्री कर दी थी, ऊपर से खुला था और नीचे से, नीचे 1 फीट ऊपर है जमीन समझ लो, उसमें लोगों ने कहा कि ये अच्छा है खलिहान के बीच में, वहां नीचे कहां बैठेंगे, इसमें बैठ जाएं और थोड़ा सा शांति भी रहेगी, अच्छा रहेगा, ये तो चारों तरफ हवा भी थोड़ी रुकेगी, सिक्के लगे हुए हैं, बंधे हुए थे वो पूरे। खैर उसमें बैठ गए भैया, अब अपन तो उस समय एलक थे, और भी मुनि महाराज जी तो तीन मुनि महाराज जी थे कुल मिला के, तो अपने को समझ में नहीं आया कि नीचे कैसा स्पर्श है, लेकिन महाराज जी लोगों को समझ में आ रहा था, तो वो बार बार जो है वो ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब वो सिट्टे जो है वो चुभते थे उसमें। अब रात पूरी मैंने लगभग हो चुकी और नीचे पीछे लगा करके बैठ गए, मैंने बैठ गए, अब कोई उठने वाला ऐसी तो स्थिति नहीं कि हाँ ठीक नहीं लग रहा अब दूसरी जगह जाएंगे हम, अच्छा स्पर्श लाओ, तो बैठ गए चुपचाप। अब इतने अकेला नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रात चढ़ी वैसे वैसे ठंड गिरना शुरू हुई, ठंड गिरती है, पानी अकेला नहीं गिरता, ठंड गिरती है, आप कभी बाहर ग्राउंड में बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे गिर रही है, बरस रही है ठंड, तो ठंड जो है गिरना शुरू हुई 10 बजे रात को। गांव के अजैन जो लोग थे उनको मालूम पड़ा कि जैन साधु यहां पर आए हैं, वहां तो जैन घर एक था कुल मिलाकर के, वो बेचारे आए और जैसा तैसा करके, और 10 बजे उनने देखा कि ठंड तो बहुत है महाराज जी, लोगों को ठंड लग रही होगी, बाहर सिट्टे पड़े थे, देखना आप मजा। हम लोग जो है 10 बजे 10:30 बजे और वहीं के वहीं थोड़ा सा विश्राम की दृष्टि से और लेट गए, अजर्षी लेटे, फिर हम लोग सब लेट गए और लेटे, उस उन्होंने सोचा कि महाराज जी वगैरह कुछ चिटाई वगैरह तो है नहीं, ढकेंगे भी नहीं और कुछ सिट्टे ऊपर से डाल दें, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं, अब देखिएगा उनने अच्छा करने के लिए, और सिट्टे जो है ढेर सारे, जितने डाल दो उतने अच्छा रहेगा, सिट्टे डाल दिए। अब ये कंडीशन हो गई कि आप करवट नहीं ले सकते, सब लोग बिल्कुल सिक्के पूरे पूरे ऐसे डाल दिए कि करवट लेना मुश्किल हो गई, क्योंकि करवट लेते तो वो छिल जाएगा बिल्कुल पूरा का पूरा हाथ उसमें ऐसे खरोंच में, तो हिल भी नहीं सकते, वहीं के वहीं पड़े रहे। सारी रात जो है निकल गई, सुबह की सामायिक जो बैठ के करना थी, बैठ के की नहीं जा सकती, जब तक ऊपर का नहीं हटाएंगे तब तक बैठेंगे कैसे, तो चुपचाप वहीं पड़े पड़े आराम से जो है, आराम से कह रहा आराम से जो है सामायिक आमायिक कर ली। उसका जब लोगों ने सवेरे से प्रकाश हुआ सब हटाया, सब निकाला, तो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए उठे और हम लोग बड़े गमगीन से, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, कोई उसमें वो बात नहीं है, सिर्फ आचार्य श्री के चेहरे पर रोशनी थी, सिर्फ उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती है, बाकी हम सब लोग जैसे रात में बहुत तकलीफ में गुजारी हो बिल्कुल चेहरे से झलक रहा था। और जबकि ये मान के चलिए कि हमारे और आपके शरीर से ज्यादा डेलिकेट शरीर है आचार्य श्री का, आपने शायद नजदीक से नहीं देखा, केस लॉन्च करने में अभी भी हाथ में कट जाएगा उनके, जबकि 100-200 केस लॉन्च हो चुके होंगे अभी भी, क्योंकि शरीर तो शरीर है, आत्मा की शक्ति अलग होती है, शरीर की शक्ति अलग होती, काम चलता आत्मा की शक्ति पर, तो इतना नरम। अब बाहर जब हम लोग निकले तो हम लोगों का मन मालूम क्या कह रहा था कि डांटें शावकों को कि क्या तमाशा है ये, और तुमको इतना भी ध्यान नहीं है कि महाराज जी को किस तरह की तकलीफ होगी और इतने सिट्टे डाल दी ऊपर, इस तरह का मन हो रहा था। और सुबह भक्ति हो गई, आचार्य कुछ नहीं बोले और भक्ति करके नमो ग्रहणताणम और नमोकार मंत्र करके जाने लगे। केवल ऐसी निर्द्रा के मौके कब कब आते हैं। धन्य है इन लोगों की तीर्थ कि इनने हमें ऐसा निर्द्रा का मौका दिया। और फिर हम लोग निकले हैं और जैसे जैसे धूप बढ़ी है वैसे वैसे जितने स्क्रैच लगे थे उन स्क्रैच में धूप लगने पर ऐसा लगता था कि नमक का पानी डाल रहा है कोई, सारे स्क्रैचेस में इतने पूरे शरीर पर स्क्रैच। लेकिन फिर हम लोगों को भी एक रसायन मिल गया कि ये तो हमारे निर्जरा के लिए उपस्थित हुआ है। इस समय अगर हम समता भाव रखें तो कितने सारे असाता कर्मों की निर्जरा हो जाएगी कोई नहीं जानता। और अगर इस समय हम उनको दोषी ठहराने लगें जिनने वो हित के लिए किया था उनको दोषी ठहराएं, तो वो तो हित करके और अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा विचार करके उनके प्रति अपना अहित करते चले जाएंगे। भाई इतना सा अनुप्रेक्षा का काम है, अनुप्रेक्षा हमारे भीतर इतना बड़ा काम करके चली जाती है। हमें सोचने पर मजबूर कर दिया किसी ने कि इस चीज को तुम शांति से सहन करोगे तो ये चीज निकल जाएगी, और अशांति से करोगे तब और डिपॉजिट छोड़ करके चली जाएगी। गुस्सा होने से कितने सारे काम एक साथ होते हैं, सबसे पहले तो बात बिगड़ती है, दूसरी बात कर्म अपना पूरा फल दे के जा रहा है बल्कि और ज्यादा उदीर्ण करके जा रहा है, क्योंकि आप गुस्सा में गुस्सा हुए हो, उदय में क्रोधित हुए हैं, और आगे जाकर के वो अपनी और संस्कार छोड़ के जा रहा है। और हमेशा के लिए आपकी सामने वाले से हमेशा के लिए फ्रिक्शन डाल करके जा रहा है, इतने सारी चीजें करके जा रहा है। और अगर आप चुप रह जाएं ये कुछ भी नहीं होने वाला, ना अपनी संस्कार छोड़ के जाएगा, ना कोई कर्मबंध आगे करने की गुंजाइश उसमें है, ना कोई बात बिगड़ेगी, ना आगे कोई प्रश्न उठेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा था। इतना सरल है, लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन जीवन में ये सोच आना शुरू हो जाए, भावना बननी शुरू हो जाए, उस दिन सरल है, उसके पहले तक तो बहुत कठिन है। और सरल कब होगा, कब आएगा जीवन में, मैं तो एक ही बात फिर कहूंगा, दोहरा दूं उसी को, कि जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, जब तक आपकी श्रद्धा आपके भीतर पैदा नहीं होगी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, तब तक आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि जीवन में कुछ शुरू हो पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कितने ही आपको शैवोपशम हो, आप तत्व की फर्स्ट क्लास A1 व्याख्या, मेरे से भी प्यारी व्याख्या आप कर लेंगे तत्व की, सात तत्व की जैसी भूल सातवें अध्याय में दई है रूढ़मल जी ने, बिल्कुल ज्यों की त्यों आप बता दोगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि देखो अपन अपने को धोखे में नहीं डालें भैया, उसी चीज को अपन क्यों ना पढ़ें, निषेध थोड़ी है, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ें जिससे कि जीवन में कुछ हमारे आए, हमारा सिर्फ इंटेंशन ये। आप ये नहीं सोचना कि ये ऐसा क्यों कह रहे, नहीं, तत्व चिंतन कब कार्यकारी है मैं ये बता, तत्व चिंतन तब कार्यकारी है जबकि तत्व चिंतन के लिए जो तत्व हमें दिए हैं उन भगवान के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा प्रकट होगी तब उनके कहे हुए का हमारे जीवन में कुछ फायदा होगा, नहीं तो कहे हुए का कोई फायदा नहीं है। ये हम ध्यान में रख करके, और अनुप्रेक्षा में भी यही है कि सबसे पहले हम डिवोट हों, डिवोशनल एटीट्यूड बनना चाहिए। एक आदमी पूरा का पूरा भक्तिमय हो गया, मैं जो ये शब्द कह रहा हूं ना बहुत सोचने का शब्द है ये डिवोशनल एटीट्यूड, जिस आदमी का पूरा सोच श्रद्धा से युक्त हो गया, जिसके जीवन में श्रद्धा आ गई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो आदमी पूरा श्रद्धा की मूर्ति हो गया। देखिए थोड़ी देर के लिए गुस्सा करके क्षमा कर देना बहुत सरल बात है, लेकिन पूरा का पूरा क्षमामय हो जाना, क्रोध की स्थिति नहीं रहना, अरे क्या बात, आप सोच रहे हैं कि इतना सरल है क्या, भगवान ही हो सकते हैं इसमें तो ऐसा होने वाले, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश तो कर ही सकते। तो डिवोशनल एटीट्यूड पूरी तरह से मैं समर्पित, समर्पण की मूर्ति हो जाना, ये स्थिति अगर हमारी बनती हो। इसी तरह जो है अपना आज वर्तमान में क्या है, नोइंग एटीट्यूड है, अपन पूरे के पूरे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ज्ञानात्मक हो गए, परमात्मा भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान शरीरी है, अपना शरीर ज्ञान शरीरी नहीं है, अपना सिर्फ मन जो है ना तर्क शरीरी है पूरा का पूरा, ये मुश्किल हो गई और कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इसको तोड़ दीजिएगा, फिर आपके अंदर जो तर्क आएगा श्रद्धा के साथ जो तर्क आएगा वो तर्क हमारे लिए जीवन में हमेशा काम आएगा, फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपन ध्यान रखें कि जब भी अपना निद्रा करने का मन हो अपन फौरन भावना निद्रा की करें और सारी चीजें छोड़ करके उसी चीज में से माने पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं कि हमारा अप्रोच विधेयात्मक कि नहीं इनने क्या किया मेरे लिए इतना अच्छा उपस्थित कर दिया कि मैं निद्रा कर सकता हूं, ऐसा सोच करके अपन निद्रा करना शुरू कर दें उसी चीज में से। आज कह रहे हैं कि चार गाथाओं में अथ अधिक निद्रा कारणम गाथा चतुष्केन आह, कितना उपकार है आचार्यों का वो बार बार हमें समझाने के लिए कि देखो अगर तुम ज्यादा करना चाहो, जैसे कोई बेटे को अपने समझाता है कि देखो तुम दुकानदारी तो करने लगे लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा मैं वो बताता हूँ तुम्हें, आज अब बहुत दिन हो गए और ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा ये बताता हूँ। ऐसे ही आचार्य महाराज अपने ऊपर कितनी कृपा करके कहते कि देखो निद्रा करना तुमने शुरू कर दी ज्यादा कैसे होगी बताते हम, अब थोड़ा सा ऐसा और सोचना शुरू कर दो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। वही बात है यहाँ पर, जो विसहदि दुवैनम साहम्य हीनयम चौवसग्गम। दो तीन किताबें हैं लगता है। जिन्यून कसायरियुं तस्य हवे निज्जरा विउला। इतना सब होने पर निजरा विपुल मात्रा में बहुत मात्रा में होती है किसके लिए, जो विषहदि दुर्वैनम यह विषहते दुर्वचनम साधर्मिक हीरनम च उपसर्गम जित्वा कषाय रूपम अपि। जो कषाय रिपु को कषाय के शत्रु को जीत लेता है और क्या क्या दुर्वचनों को जीत लेता है। किसी ने अगर हमसे चार बातें ऊंची नीची कर ली तो कर ली, वो कर सकता था भैया, वो कर सकता था इसलिए उसने कर ली। जिसके पास देने के लिए जो होगा वो ही ना देगा, अब है ही नहीं है उसके पास कुछ और प्यारी बात करने की, उसके पास कोई है ही नहीं भीतर, तो वो तो कषाय वाली बात करेगा तो वो दुर्वचन ही कहेगा। जिसके पास अच्छे वचन है वही तो अच्छे वचन कहेगा, जिसके पास बुरे वचन है वो बुरे वचन कहेगा। तो कह लिया तो कह लिया, कोई बात नहीं, अरे वाह इनने हमसे ऐसी चली हम कछू ने कह रहे तो कहो, मगर फिर निर्जरा नहीं हुई है जहां हम कहें दिए हमें उजार कछू नहीं है, जिसको अपन मंदिर करने में कहते उजार कछू नहीं कहो, मगर जब हम बैठे हैं निर्जरा करने के लिए तब तो जरा ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि किसी ने अगर दुर्वचन कह लिए हैं तो हम चुप रहे, हमारा फर्ज है, क्योंकि वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहा है। एक जगह कहीं आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो हमारे बारे में हमारी निंदा कर रहा है वो हमें जानता नहीं है, अज्ञानी है। जो हमें हमारी आत्मा के स्वभाव को जानता होता तो हमारी निंदा कर ही नहीं सकता, ऐसा हम तुरंत विचार करें। और दूसरे की अज्ञानता पर क्रोध नहीं किया जा सकता भाई, दूसरे की अज्ञानता पर तो मात्र दया ही की जा सकती है कि देखो इनका कैसा उदय, इनके अज्ञान की कैसी इनकी परिणति कि इनको इतना भी समझ नहीं है कि निंदा करके मेरा अहित नहीं कर रहे, ये स्वयं अपना अहित करते चले जा रहे हैं। किसी की निंदा करने से उसका अहित नहीं होता, ध्यान रखना, जो निंदा करता है उसी का अहित होता। किसी के दुर्वचन सुन करके चुप रह जाने पर जितनी निर्जरा होती है शायद उतना ही कर्म बंध और ज्यादा जवाब देने पर होता है। इसलिए कह रहे कि दुर्वचन अगर कोई कह दे तो शांत रहना, निर्जरा बहुत होगी, और अगर आप दुर्वचन का कोई जवाब शांति से भी दुर्वचन का जवाब आप देंगे तब भी उतनी निर्जरा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। गुप्ती सबसे पहले, फिर उसके बाद समिति, जितनी ज्यादा गुप्ती से होगी फिर उससे समिति कारण है। जब आप गुप्ती नहीं रख पाए पहले तो यही कहेंगे कि चुप रह जाओ, लेकिन फिर सागुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी है, ये सब निर्जरा के कारण है, ये सब संवर के कारण है, ये क्रम आचार्यों ने दिया है। गुप्ती के लिए समिति, समिति के लिए धर्म, धर्म के टिकने के लिए अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के लिए चारित्र, ये सब चीजें क्रम क्रम से आएंगी। आपको गुप्ती नहीं संभल रही समिति में आ जाइए, समिति में भी आप गड़बड़ा गए तो जरा ध्यान रखिएगा कि धर्म में तो टिके रहिएगा, धर्म में भी गड़बड़ा गए तो अनुप्रेक्षा में टिके रहिए, चारित्र से भ्रष्ट मत हो जाइए, नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही गए आप काम से, फिर निर्जरा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला स्टेज है कि हम चुप हो जाएं, नहीं है तो फिर हम उस बात को समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ कहें, ऐसा कहें जिससे कि समाधान हो जाए, बात और ना बढ़े, तो भी निर्द्रा होगी। यहाँ कह रहे और एक इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है, साधर्मिक हीलनम क्या, साधर्मी के द्वारा लगाए जाने वाले अपवाद भी हमें निर्द्रा के कारण है, ध्यान रखना। अभी तक तो ये पढ़ा होगा कि साधर्मी के द्वारा अपवाद लगाए जाने पर संक्लेश होता है, लेकिन आज यहां पर कह रहे हैं कि साधर्मी अपवाद फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपन ध्यान रखें कि जब भी अपना निर्द्रा करने का मन हो, अपन फौरन भावना निर्द्रा की करें और सारी चीजें छोड़ करके उसी चीज में से, माने पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, कि हमारा अप्रोच विधेयात्मक, कि नहीं इनने क्या किया मेरे लिए, इतना अच्छा उपस्थित कर दिया कि मैं निर्द्रा कर सकता हूं, ऐसा सोच करके अपन निर्द्रा करना शुरू कर दें। उसी चीज में से आज कह रहे हैं कि चार गाथाओं में अथ अधिक निर्द्रा कारणम गाथा चतुष्केन आह, कितना उपकार है आचार्यों का वो बार बार हमें समझाने के लिए कि देखो अगर तुम ज्यादा करना चाहो, जैसे कोई बेटे को अपने समझाता है कि देखो तुम दुकानदारी तो करने लगे लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा मैं वो बताता हूँ तुम्हें आज, अब बहुत दिन हो गए और ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा ये बताता हूँ। ऐसे ही आचार्य महाराज अपने ऊपर कितनी कृपा करके कहते कि देखो निर्द्रा करना तुमने शुरू कर दी, ज्यादा कैसे होगी बताते हम, अब थोड़ा सा ऐसा और सोचना शुरू कर दो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। वही बात है यहाँ पर, जो विसहदि दुवैनम साहम्य हीनयम चौवसग्गम, दो तीन किताबें हैं लगता है, जिन्यून कसायरियुं तस् हवे निज्जरा व्युला। इतना सब होने पर निज्रा विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में होती है, किसके लिए, जो विषहदि दुर्वचनम, यह विषहते दुर्वचनम साधर्मिक हीलनम च उपसर्गम जित्वा कषाय रूपम अपि, जो कषाय रिपु को, कषाय के शत्रु को जीत लेता है और क्या क्या दुर्वचनों को जीत लेता है। किसी ने अगर हमसे चार बातें ऊंची नीची कर ली तो कर ली, वो कर सकता था भैया, वो कर सकता था इसलिए उसने कर ली, जिसके पास देने के लिए जो होगा वो ही ना देगा, अब है ही नहीं है उसके पास कुछ और प्यारी बात करने की, उसके पास कोई है ही नहीं भीतर, तो वो तो कषाय वाली बात करेगा तो वो दुर्वचन ही कहेगा। जिसके पास अच्छे वचन है वही तो अच्छे वचन कहेगा, जिसके पास बुरे वचन है वो बुरे वचन कहेगा। तो कह लिया तो कह लिया, कोई बात नहीं, अरे वाह इनने हमसे ऐसी के लिए, हम कछू नहीं कह रहे तो कहो, मगर फिर निर्जरा नहीं हुई है, जा हम कहें दिए, हमें उजार कछू नहीं है, जिसको अपन मंदिर खंडी में कहते उजार कछू नहीं कहो, मगर जब हम बैठे हैं निर्जरा करने के लिए तब तो जरा ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि किसी ने अगर दुर्वचन कह लिए हैं तो हम चुप रहें, हमारा फर्ज है, क्योंकि वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहा है। एक जगह कहीं आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो हमारे बारे में हमारी निंदा कर रहा है वो हमें जानता नहीं है, अज्ञानी है, जो हमें हमारी आत्मा के स्वभाव को जानता होता तो वो हमारी निंदा कर ही नहीं सकता, ऐसा हम तुरंत विचार करें। और दूसरे की अज्ञानता पर क्रोध नहीं किया जा सकता भाई, दूसरे की अज्ञानता पर तो मात्र दया ही की जा सकती है कि देखो इनका कैसा उदय, इनके अज्ञान की कैसी इनकी परिणति, कि इनको इतना भी समझ नहीं है कि निंदा करके मेरा अहित नहीं कर रहे, ये स्वयं अपना अहित करते चले जा रहे हैं। किसी की निंदा करने से उसका अहित नहीं होता, ध्यान रखना, जो निंदा करता है उसी का अहित होता। किसी के दुर्वचन सुन करके चुप रह जाने पर जितनी निर्जरा होती है शायद उतना ही कर्म बंध और ज्यादा जवाब देने पर होता है। इसलिए कह रहे कि दुर्वचन अगर कोई कह दे तो शांत रहना, निर्जरा बहुत होगी, और अगर आप दुर्वचन का कोई जवाब, शांति से भी दुर्वचन का जवाब आप देंगे तब भी उतनी निर्जरा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। गुप्ति सबसे पहले, फिर उसके बाद समिति, जितनी ज्यादा गुप्ति से होगी फिर उससे समिति कारण है। जब आप गुप्ति नहीं रख पाए पहले तो यही कहेंगे कि चुप रह जाओ, लेकिन फिर सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय है, ये सब निर्द्रा के कारण है, ये सब संवर के कारण है, ये क्रम आचार्यों ने दिया है, गुप्ती के लिए समिति, समिति के लिए धर्म, धर्म के टिकने के लिए अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के लिए चारित्र, ये सब चीजें क्रम क्रम से आएंगी। आपको गुप्ती नहीं संभल रही, समिति में आ जाइए, समिति में भी आप गड़बड़ा गए तो जरा ध्यान रखिएगा कि धर्म में तो टिके रहिएगा, धर्म में भी गड़बड़ा गए तो अनुप्रेक्षा में टिके रहिए, चारित्र से भ्रष्ट मत हो जाइए, नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही गए आप काम से, फिर निर्जरा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला स्टेज है कि हम चुप हो जाएं, नहीं है तो फिर हम उस बात को समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ कहें, ऐसा कहें जिससे कि समाधान हो जाए, बात और ना बढ़े तो भी निर्जरा होगी। यहाँ कह रहे हैं और एक इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है, साधर्मिक हीलनम चा, साधर्मी के द्वारा लगाए जाने वाले अपवाद भी हमें निर्जरा के कारण है, ध्यान रखना। अभी तक तो ये पढ़ा होगा कि साधर्मी के द्वारा अपवाद लगाए जाने पर संक्लेश होता है, लेकिन आज यहां पर कह रहे हैं कि साधर्मी